का था, रूह वही रूप नया।
हिंदी साहित्य को अपने अस्तित्व से गौरवान्वित करने वाली विशेष कहानियों के इस संग्रह में प्रस्तुत है अज्ञेय की कहानी जयदोल। लेफ्टिनेंट सागर ने अपना कीचड़ से सना चमड़े का दस्ताना उतारकर ट्रक के दरवाजे पर पटकते हुए कहा, गुरुंग तुम गाड़ी के साथ ठहरो, हम कुछ बंदोबस्त करेगा। गुरुंग सड़क से जूतों की एड़िया चटका कर बोला, ठीक है साहब। सांझ हो रही थी। तीन दिन मूसलाधार बारिश के कारण नवगांव में रुके रहने के बाद दोपहर को थोड़ी देर के लिए आकाश खुला तो लेफ्टिनेंट सागर ने और देर करना ठीक ना समझा। ठीक क्या ना समझा, आगे जाने के लिए वह इतना उतावला हो रहा था कि उसने लोगों की चेतावनी को अनावश्यक सावधानी माना और यह सोचकर कि वह कम से कम शिवसागर तो जा ही रहेगा रात तक, वह चल पड़ा था। जोरहट पहुंचने तक ही शाम हो गई थी, पर उसे शिवसागर के मंदिर देखने का इतना चाव था कि वह रुका नहीं, जल्दी से चाय पीकर आगे चल पड़ा। रात जोरहट में रहे तो सवेरे चलकर सीधे डिब्रूगढ़ जाना होगा। रात शिवसागर में रहकर सवेरे वह मंदिर और ताल को देख सकेगा। शिवसागर, रुद्रसागर, जयसागर, कैसे सुंदर नाम है। सागर कहलाते हैं तो बड़े बड़े ताल होंगे और प्रत्येक के किनारे पर बना हुआ मंदिर कितना सुंदर दिखता होगा। असमिया लोग हैं भी तो बड़े साफ सुथरे, उनके गांव इतने स्वच्छ होते हैं तो फिर मंदिरों का क्या कहना। शिवदोल, रुद्रदोल, जयदोल, सागर तट के मंदिर को दोल कहना कैसी सुंदर कवि कल्पना है। सचमुच जब ताल के जल में मंद मंद हवा से सिहरती चांदनी में मंदिर की कुहासे सी परछाई डोलती होगी तब मंदिर सचमुच सुंदर हिंडोले सा दिखता होगा। बस इसी उत्साह को लिए वह बढ़ता चला जा रहा था। 30-35 मील का क्या है, घंटे भर की तो बात है। लेकिन 7-1 मील बाकी थे कि गाड़ी कच्ची सड़क के कीचड़ में फंस गई। पहले तो स्टीयरिंग ऐसा मक्खन सा नरम चला मानो गाड़ी नहीं नाव की पतवार हो और नाव बड़े से भंवर में हिचकोले खाती झूम रही हो। फिर लेफ्टिनेंट के संभालते संभालते गाड़ी धीमी होकर रुक गई, यद्यपि पहियों की घूमते रहकर कीचड़ उछालने की आवाज आती रही। इसके लिए साधारणतः तैयार होकर ट्रक ही चलते थे। तुरंत बेलचा निकाला गया, कीचड़ साफ करने की कोशिश हुई, लेकिन कीचड़ गहरा और पतला था। ये बेलचे का नहीं पंप का काम था। फिर टायरों पर लोहे की जंजीरें चढ़ाई गईं। पहिए घूमने पर कहीं पकड़ने को कुछ मिले तो गाड़ी आगे चले, मगर चलने की कोशिश पर लीक गहरी कटती गई और ट्रक धसता चला गया, यहां तक कि नीचे का गियर बॉक्स भी कीचड़ में डूबने को हो गया। मानो इतना ही काफी ना हो तभी इंजन ने 2-4 बार फटफट का शब्द किया और चुप हो गया और फिर स्टार्ट ही ना हुआ। अंधेरे में गुरुंग का मुंह दिखता था और लेफ्टिनेंट ने मन ही मन संतोष किया कि गुरुंग को उसका मुंह भी नहीं दिखता होगा। गुरुंग गोरखा था और फौजी गोरखों की भाषा कम से कम भावना की दृष्टि से गूंगी होती है, मगर आंखें या चेहरे की झुर्रियां सब समय गूंगी नहीं होती। इस समय अगर उनमें लेफ्टिनेंट साहब की भावुक उतावली पर विनोद का आभास भी दिख गया तो दोनों में मूक वैमनस्य की एक दीवार खड़ी हो जाएगी। तभी सागर ने दस्ताने फेंक कर कहा, हम कुछ बंदोबस्त करेगा, और फिच फिच कीचड़ में जमा जमा कर बूट रखता हुआ आगे बढ़ चला। कहने को तो उसने कह दिया कि पर बंदोबस्त वह करेगा क्या। रात में बादल फिर घेरने लगे। शिवसागर 7 मील है तो दूसरे सागर भी 3-4 मील तो होंगे ही, और क्या जाने कोई बस्ती भी होगी कि नहीं। और जयसागर तो बड़े बीहड़ मैदान के बीच में है। उसने पढ़ा था कि उस मैदान के बीच में ही रानी जयमती को यंत्रणा दी गई थी कि वह अपने पति का पता बता दे। 5 लाख आदमी उसे देखने इकट्ठे हुए थे और कई दिनों तक रानी को सारी जनता के सामने सताया तथा अपमानित किया गया था। एक बात हो सकती है कि पैदल ही शिवसागर चला जाए, पर उस कीचड़ में फिच फिच 7 मील उसी में भोर हो जाएगा, फिर तुरंत गाड़ी के लिए वापस जाना पड़ेगा। नहीं, यह बेकार है। दूसरी सूरत रात गाड़ी में ही सोया जा सकता है। पर गुरुंग वह भूखा ही होगा, कच्ची रसद तो होगी पर बनाएगा कैसे। सागर ने तो गहरा नाश्ता किया था, उसके पास बिस्किट वगैरह भी हैं, पर अफसरी का बड़ा कायदा है कि अपने मातहत को कम से कम खाना तो ठीक से खिलाओ। शायद आसपास कोई गांव हो। कीचड़ में कुछ पता न लगता था कि सड़क कितनी है और अगल बगल का मैदान कितना। पहले तो दो चार पेड़ भी किनारे किनारे थे पर अब या भी नहीं, और दूर के पेड़ भी ऐसे धुंधले हो गए थे कि भ्रम हो कहीं चश्मे पर नमी की ही करामात तो नहीं है। अब रास्ता जानने का एक ही तरीका था, जहां कीचड़ कम गहरा हो वही सड़क, इधर उधर हटते ही पिंडलियां तक पानी में डूब जाती थी और तब यह फिर धीरे धीरे पैर से टटोलकर मध्य में आ जाता था। यह क्या है? पुल सा लगता है। हाँ हाँ, यह पुल है या रेलिंग है, मगर दो पुल हैं समकोण बनाते हुए। क्या दो रास्ते हैं? कौन सा रास्ता पकड़ें? एक कुछ ऊंची जमीन की ओर जाता जान पड़ता था। ऊंचे पर कीचड़ कम होगा इस बात का ही आकर्षण काफी था, फिर ऊंचाई पर से शायद कुछ दिख भी जाए। सागर उधर को ही चल पड़ा। पुल के पार ही सड़क एक ऊंची उठी हुई पटरी सी बन गई। तनिक आगे इसमें कई मोड़ से आए, फिर जैसे धन खेत में कहीं कहीं कई एक छोटे छोटे खेत एक साथ पड़ने पर उनकी मेड़ मानो एक साथ ही कई और जाती जान पड़ती है, इसी तरह वह पटरी भी कई और को जाती सी जान पड़ी। सागर मानो एक बिंदु पर खड़ा है जहां से कई रास्ते हैं, प्रत्येक के दोनों ओर जल मानो अथाह समुद्र में पटरियां बिछा दी गई। सागर ने एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई, शून्य। फिर आंखों की कोरे कस कर झांक कर देखा, बादलों की रेखा में एक कुछ अधिक घनी सी रेखाओं से दिखी। बादल ऐसा समकोण तो नहीं हो सकता, नहीं ये इमारत लगती है। सागर उसी ओर को बढ़ने लगा। रोशनी नहीं दिखती पर शायद भीतर कोई हो। पर ज्यों ज्यों वह निकट आता गया उसकी आशा धुंधली पड़ती गई। वह असमिया घर तो नहीं हो सकता, इतने बड़े घर अब कहां हैं? फिर यहां जहां बांस और फूस के बासे ही हो सकते हैं, ईंट के घर नहीं। अरे यह तो कोई बड़ी इमारत है, क्या हो सकती है? मानो उसके प्रश्न के उत्तर में ही सहसा आकाश में बादल कुछ फीका पड़ा और सहसा धुंधला सा चांद भी झलक गया। उसके अधूरे प्रकाश में सागर ने देखा एक बड़ी सी ऊपर से चपटी सी इमारत, दुमंजली बारादरी बरामदे से, जिसमें कई एक मेहराबें एक के बीच से मानो आकाश झांक दिया। सागर ठिठक कर क्षण भर उसे देखता रहा। सहसा उसके भीतर कुछ जागा जिसने इमारत को पहचान लिया। या तो अहोम राजाओं का क्रीड़ा भवन है। क्या नाम है इसका? रंग महल? नहीं नहीं नहीं, हवा महल? नहीं, ठीक याद नहीं आता, पर यह उस बड़े पठार के किनारे पर है जिसमें जयमती। एकाएक हवा सनसना उठी। आसपास के पानी में जहां तहां नरसल के झोंप थे, झुककर फुसफुसा उठे जैसे राजा के आने पर मृत्यु सेवकों में से एक सिहरन दौड़ जाए। एकाएक यह लक्ष्य करके कि चांद फिर छिपा जा रहा है, सागर ने घूमकर चीनी लेना चाहा कि ट्रक किधर कितनी दूर है, पर वह अभी भी यह तय नहीं कर सका था कि कहां क्षितिज है जिसके नीचे पठार है और ऊपर आकाश या मेघाली कि चांद छिप गया, और अगर उसने खूब अच्छी तरह आकार पहचान ना रखा होता तो रंग महल या हवा महल भी खो जाता। महल में छत होगी, वहां सूखा होगा, वहां आग भी जल सकती है, शायद बिस्तर लाकर सोया भी जा सकता है। ट्रक से तो यही अच्छा रहेगा, गाड़ी को तो कोई खतरा नहीं। सागर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। रंग महल बहुत बड़ा हो गया था, उसकी कुर्सी ही इतनी ऊंची थी कि असमिया घर उसकी ओट में छिप जाए। पक्के फर्श पर पैर पड़ते ही सागर ने अनुमान किया 30-35 सीढ़ियां होंगी। सीढ़ियां चढ़कर वह असली देवड़ी तक पहुंचेगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते हवा चीख उठी, कई मेहराबों से मानो उसने गुर्रा कर कहा, कौन हो तुम इतनी रात गए मेरा एकांत भंग करने वाले? विरोध के फुत्कार का यह थपेड़ा इतना सच्चा था कि सागर मानो फुसफुसा ही उठा। मैं सागर आसरा ढूंढता हूं रैन बसेरा। पोपले मुंह का बूढ़ा जैसे खिसिया कर हंसे, वैसी हवा हंस उठी। ही ही ही, खी खी खी, यह हवा महल है, हवा महल, अहोम राजा का लीलागार, अहोम राजा का व्यसनी विलासी, छहों इंद्रियों से जीवन की लिसड़ी बोटी से छहों रसों को चूस कर उसे झंझोड़ कर फेंक देने वाले नृशंस लीला पिशाचों का यहां आसरा, यहां बसेरा। सीढ़ियों की चोटी से मेहराबों के तले खड़े सागर ने नीचे और बाहर की ओर देखा। शून्य, महाशून्य, बादलों में बसी नमी और ज्वाला से प्लवन, वज्र और बिजली से भरा हुआ शून्य। क्या उसी की गुर्राहट हवा में है, या कि नीचे फैले नंगे पठार की, जिसके चूतड़ों पर दिन भर सड़ पानी के कोड़ों की बौछार पड़ती रही है, उसी पठार का आक्रोश, सिसकन, रिहाट। इसी जगह, इसी मेहराब के नीचे खड़े कभी अधनंगे अहोम राजा ने अपने गठीले शरीर को दर्प से अकड़ाकर सितार की खूंटी की तरह उमेट कर बाएं हाथ के अंगूठे को कमर बंद में लटकाकर सीढ़ियों पर खड़े छत शरीर राजकुमारों को देखा होगा, जैसे कोई सांड खसिया बैलों के झुंड को देखे और फिर दाहिने हाथ की तर्जनी को उठाकर दाहिने भ्रू को तनिक सा कुंचित करके संकेत से आदेश किया होगा कि यंत्रणा को और कड़ी होने दो। लेफ्टिनेंट सागर की टांगे मानो शिथिल हो गई। वह सीढ़ी पर बैठ गया, पैर उसने नीचे को लटका दिए, पीठ मेहराब के निचले हिस्से में टेक दी। उसका शरीर थक गया था दिन भर की स्टीयरिंग पर बैठे बैठे और पौने 200 मील की कीचड़ की सड़क में बनी लोकों पर आंखें जमाए रहने से आंखें भी ऐसे चुनचुना रही थी मानो उनमें बहुत बारीक पिसी हुई रेत डाल दी गई। आंखें बंद भी वो करना चाहे और बंद करने में क्लेश भी हो, या आंख खुली रखकर ही किसी तरह दीद को समेट ले या बंद करके देखता रह सके तो। अहोम राजा चुलिक फा राजा में ईश्वर का अंश होता है। ऐसे अंधविश्वास पालने वाली अहोम जाति के लिए यह मानना स्वाभाविक ही था कि राजकुल का अक्षत शरीर व्यक्ति ही राजा हो सकता है। जिसके शरीर में कोई छत है उनमें देवत्व का अंश कैसे रह सकता है। देवत्व और छूण नहीं, ईश्वरत्व अक्षुण ही होता है और राजा शरीर अक्षत। अहोम परंपरा के अनुसार कुल धातु के सेतु से पार होकर चुलिक का भी राज सिंहासन पर पहुंचा, लेकिन वह सेतु सदा के लिए खुला रहे इसके लिए उसने एक अत्यंत निशंस उपाय सोचा। अक्षत शरीर राजकुमार ही राजा हो सकते हैं, अतः सारे अक्षत शरीर राजकुमार उसके प्रतिस्पर्धी और सामान्य घातक हो सकते हैं। इसके निराकरण का उपाय यह है कि सबका एक एक कान या चिगुनी कटवा दी जाए, हत्या भी न करनी पड़े, मार्ग के रोड़े भी हट जाएं, लाठी न टूटे, सांप भी मरे नहीं पर उसके विषदंत उखाड़ ली दीजिए। छत शरीर कनकटे या छिगनी कटे राजकुमार राजा हो ही नहीं सकते, तब उन्हें राजघात का लोभ भी न सताएगा। चुलिकफा ने सेनापति को बुलाकर गुप्त आज्ञा दी कि रात में चुपचाप राजकुल के प्रत्येक व्यक्ति के कान या छिगुनी काटकर प्रातःकाल दरबार में राज चरणों में अर्पित किए जाएं। और प्रातःकाल वही रंगमहल की सीढ़ियों पर उसके चरणों में यह विभत्स उपहार चढ़ाया गया होगा और उसमें उसी दर्द भरी अवज्ञा में होंठों की तार सी तनी पतली रेखा को तनिक मोड़ सी देकर शब्द किया होगा हूं, और रक्त सने थाल को पैर से तनिक सा ठुकरा दिया गया होगा। चुलिकफा निष्कंटक राजा, लेकिन नहीं, यह तीर का कैसा साल गया, एक राजकुमार भाग गया। अक्षत, लेफ्टिनेंट सागर मानो चुलिकफा के चीत्कार को स्पष्ट सुन सका, अक्षत भाग गया। वहां सामने लेफ्टिनेंट ने फिर आंखों को कसकर बादलों की दरार को भेदने की कोशिश की। वहां सामने कहीं नगा पर्वत श्रेणी है। वनवासी वीर नगा जातियों से अहोम राजाओं की कभी नहीं बनी, वे अपने पर्वतों के नंगे राजा थे। वे अपनी समतल भूमि के कौशे पहन कर भी अधमंगे रहने वाले महाराजा पीढ़ियों के युद्ध के बाद दोनों ने अपनी अपनी सीमाएं बांध ली थी और कोई किसी से छेड़छाड़ नहीं करता था। केवल सीमा प्रदेश पर पड़ने वाली नमक की झीलों के लिए युद्ध होता था, क्योंकि नमक दोनों को चाहिए था। पर अहोम राजद्रोही नगा जातियों के सरदार के पास आश्रय पाए, असह है, बहुत बड़ा असह। हवा ने साय साय करके दाद दी असह, मानो चूलिफा के विवश क्रोध की लंबी सागर की देह को छू गई। यहीं खड़े होकर उसने वह सांस खींची होगी, उस मेहराब की ही ईंट ईंट में उसके सुलगते वायु कण बसे होंगे। लेकिन जाएगा कहां? उसकी वधु तो है, वह जानेगी। उसका पति कहां है, उसे जानना होगा। जयमती अहोम राज्य की अद्वितीय सुंदरी, जनता की लाडली, होने दो। चूलिफा का राजा है या शत्रुविहीन निष्कंटक राज्य करना चाहता है, जयमती को पति का पता देना ही होगा, उसे पकड़वाना ही होगा। चूलिफा उसका प्राण नहीं चाहता, केवल एक कान चाहता है या एक छिगनी, चाहे बाएं हाथ की भी छिगनी, क्यों नहीं बताएगी जयमती? वह प्रजा है, प्रजा की हड्डी बोटी पर भी तो राजा का अधिकार है। बहुत ही छोटे एक क्षण के लिए चांद झलक गया। सागर ने देखा सामने खुला, आकारहीन, दिशाहीन, मानातीत निरा विस्तार, जिसमें नरसलों की साए साए हवा का असंख्य करहाटों के साथ रोना, उसे घेरे हुए मेहराबों की क्रुद्ध सांपों की सी फुफकार। चांद फिर छिप गया और पानी की नई बौछार के साथ सागर ने आंखें बंद कर ली। असंख्य सहमी हुई कराहें और पानी के जैसे नंगे चूतड़ों पर सदिया के लचीले बेतों की सड़ाक सड़ाक। सदिया अर्थात शव दिया। अब किसका शव वहां मिला था? याद नहीं। हाँ, शव जरूर। किसका शव? जयमती? नहीं नहीं नहीं, जयमती का नहीं। वह तो उन 500,000 बेबस देखने वालों के सामने एक लकड़ी के मंच पर खड़ी है। अपनी ही स्पृश लज्जा में, अभेद मौन में, अटूट संकल्प और दुर्दमनीय स्पर्धा में लिपटी हुई 7 दिन की भूखी प्यासी घाम और रक्त की कीच से लथपथ, लेकिन शेष नाक के माथे में ठुकी हुई कोली की भांति अडिक, आकाश को छूने वाली प्रातः शिखा से निष्कंप। लेकिन यह क्या? सागर तिलमिलाकर उठ बैठा। मानो अंधेरे में भूत ही से दिख पड़ने वाली वह लाखों की भीड़ भी कांप कर फिर जड़ हो गई। जयमती के गले से एक बड़ी तीखी करुण चीख निकलकर भारी वायुमंडल को भेद गई, जैसे किसी थुलथुल कछुए के पेट को मछेरे की बर्छी। सागर ने बड़े जोर से मुठिया भींच ली। क्या जयमती टूट गई? नहीं, यह नहीं हो सकता। नरसरों की तरह बिना रीढ़ की गिरती पड़ती इस लाख जनता के बीच वही तो देवदारों से तनी खड़ी है। मानवता की ज्योति शला का शहसा उसके पीछे एक दृप्त रूखी अवज्ञा भरी हंसी से पीतल की तरह झंझनाते स्वर ने कहा, मैं राजा हूं। सागर ने चौंक कर मुड़कर देखा। सुनहला रेशमी वस्त्र, रेशमी उत्तरीय, सोने की कंठी और बड़े बड़े अनगढ़ पन्नों की माला पहने भी अधनंगा एक व्यक्ति उसकी ओर ऐसी दया भरी अवज्ञा से देख रहा था, जैसे कोई राह किनारे की कृमि कीट को देखे। उसका सुगठित शरीर, छेनी से तराशी हुई चिकनी मांसपेशियां, दर्द स्फीत नासाएं तेल से चमक रही थी, आंखों की कोर में लाली थी और जो अपनी अलग ही बात कहती थी, मैं मद भी हो सकता हूं, गर्व भी, विलास लुप्ता भी और निरी निशंस नर रक्त पिपासा भी। सागर टुकड़ टुकड़ देखता रह गया, न उड़ सका न हिल सका। वह व्यक्ति फिर बोला, जयमती। जयमती, अंगूठे और तर्जनी की चुटकी बनाकर उसने झटक दी, मानो हाथ का कोई मैल कोई मसल कर फेंकते। बिना क्रिया के भी वाक्य सार्थक होता है, कम से कम राजा का वाक्य सागर ने कहना चाहा, निशंस राक्षस। लेकिन उसकी आंखों की लाली में एक बाध करने वाली प्रेरणा थी। सागर ने उसकी दृष्टि का अनुसरण करते हुए देखा, जयमती सचमुच लड़खड़ा गई थी। चीखने के बाद उसका शरीर ढीला होकर लटक गया था। जनता सांस रोके सुन रही थी। सागर ने भी सांस रोक ली। तब मानो स्तब्धता में उसे अधिक स्पष्ट दिखने लगा। जयमती के सामने एक नगा बांका खड़ा था। सिर पर कलगी, गले में लकड़ी के मुंडों की माला, मुंह पर रंग की व्याघ्रो पाण रेखाएं, कमर के घास की चटाई की कॉपीन, हाथ में बर्छी, और वह जयमती से कुछ कह रहा था। सागर के पीछे एक दर्म स्पीच स्वर फिर बोला, चूलिकफा के विधान में हस्तक्षेप करने वाला या ढीठ नगा कौन है? पर सहसा उस नंगे व्यक्ति का स्वर सुनाई पड़ने लगा और सब चुप हो गए। जयमती, तुम्हारा साहस धन्य है, जनता तुम्हें देवी मानती है, पर और अपमान क्यों सहो? राजा का बल अपार है, कुमार का पता बता दो और मुक्ति पाओ। आपकी बार रानी चीखी नहीं, शिथिल शरीर फिर एक बार करहा कर रह गई। नगावीर फिर बोला, चूलिकफा केवल अपनी रक्षा चाहता है, कुमार के प्राण नहीं। एक कान दे देने में क्या है या छिगुनी, उतना तो खेल में या मल्ल युद्ध में भी जा सकता है। रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। चूलिकफा डरपोक है, डर निशंस होता है, पर तुम कुमार का पता बताकर अपनी मान रक्षा और पति की प्राण रक्षा कर सकती हो। सागर ने पीछे सुना और मुड़कर देखा, उस व्यक्ति के चेहरे पर एक क्रूर कुटिल मुस्कान खेल रही है। सागर ने उद्धत होकर कहा, क्या? वह व्यक्ति तनकर खड़ा हो गया, थोड़ी देर सागर की ओर देखता रहा, मानो सोच रहा हो इसे वह क्या उत्तर दे। फिर और कुटिल होठों के बीच से बोला, मैं चूलिकफा डरपोक? अभी जानेगा, अभी तो तेरे मेरे काम की बात कह रहा है। नगा वीर जयमती के और निकट जाकर धीरे धीरे कुछ कहने लगा। चूलिकफा ने भौसी कोड़ कर कहा, क्या फुसफुसा रहा है? सागर ने आगे झुककर सुन लिया, जयमती, कुमार तो अपने मित्र नगा सरदार के पास सुरक्षित है, चूलिकफा तो उसे पकड़ ही नहीं सकता। तुम पता बताकर अपनी रक्षा क्यों ना करो? देखो तुम्हारी कोमल देह। आवेश में सागर खड़ा हो गया, क्योंकि उस कोमल देह में एक बिजली सी दौड़ गई। उसने तन कर कहा, सहसा नगा वीर की ओर उन्मुख होकर कहा, कायर नपुंसक, तुम नगा कैसे हुए? कुमार तो अमर है, कीड़ा चूलिकफा उन्हें कैसे छुएगा? मगर लोग क्या कहेंगे, कुमार की रानी जयमती ने देह की यंत्रणा से घबरा कर उसका पता बता दिया। हट जाओ, अपना कलंकी मुंह मेरे सामने से दूर करो। जनता में तीव्र सिहरन दौड़ गई। नरसल बड़ी जोर से कांप गए। गंदरे पानी में एक हलचल उठी, जिसके लहराते गोल वृत्त फैले की फैलते ही रह गए। हवा फुफकार उठी, बड़े जोर की गड़गड़ाहट हुई, मेघ और काले हो गए। या नीली रात है कि महानिशा की यंत्रणा की रात, सातवीं रात की नवी रात? और जयमती क्या अब बोल भी सकती है? क्या यह उसके दृढ़ संकल्प का मौन है कि अशक्तता का? और यह वही भीड़ है कि नई भीड़, वही नगावीर कि दूसरा कोई? भीड़ में कई नगे बिखरे हैं। चूलिकफा ने कटु स्वर में कहा, फिर आया वह नगा? नगावीर ने पुकार कर कहा, जयमती, रानी जयमती। रानी हिली डुली नहीं। वीर फिर बोला, रानी, मैं उसी नगा सरदार का दूत हूं जिसके यहां कुमार ने शरण ली है, मेरी बात सुनो। रानी का शरीर कांप गया, वह एकटक आंखों से उसे देखने लगी, कुछ बोले ही, बोल सकी ही नहीं। तुम कुमार का पता दे दो, सरदार उसकी रक्षा करेंगे, वह सुरक्षित है। रानी की आंखों में कुछ घना हो आया। बड़े कष्ट से उसने कहा, नीच। एक बार उसने होठों पर जीभ फेरी, कुछ और बोलना चाहा पर बोल ना सके। चूलिकफा ने वहीं से आदेश दिया, पानी दो इसे, बोलने दो। किसी ने रानी के होठों की ओर पानी बढ़ाया, पर थोड़ी देर मिट्टी के कसोरे की ओर वितृष्ण दृष्टि से देखती रही। फिर उसने आंख भरकर नगा युवक की ओर देखा, फिर एक घूंट पी लिया। तभी चूलिकफा ने कहा, बस एक घूंट, अधिक नहीं। रानी ने एक बार दृष्टि चारों ओर लाख लाख जनता की ओर दौड़ाई, फिर आंखें नगा युवक पर गड़ाकर बोली, कुमार सुरक्षित है, और कुमार की यह लाख लाख प्रजा जो उसके लिए आंखें बिछाए हैं। एक नेता के लिए जिसके पीछे चलकर आतताई का राज उलट दे, जो एक आदर्श मांगती है, मैं उसकी आशा तोड़ दूं, उसे हरा दूं, कुमार को हरा दूं? वह लक्षण भर चुप रही। चुलिफा ने एक बार आंखें दौड़ाकर सारी भीड़ को देख लिया। उसकी आंख कहीं टिकी नहीं, मानो उस भीड़ में उसे टिकने लायक कुछ मिला ही नहीं, जैसे रेंगते कीड़ों पर दीत नहीं चलती। नगा ने कहा, प्रजा तो राजा चुलिफा की है ना? दानी ने फिर उसे स्थिर दृष्टि से देखा, फिर धीरे धीरे कहा, चुलिक, और फिर कुछ ऐसे भय से अधूरा छोड़ दिया कि उसके उच्चारण से मुंह दूषित हो गया। यह प्रजा कुमार की है, जाकर नगा सरदार से कहना कि कुमार। वह फिर रुक गई। तू नगा की प्रजा है, जा उसके गंदे पंजे को चाट। रानी की आंखें चुलिफा की ओर मुड़ी, पर उसकी दीद ने उसे छुआ नहीं, जैसे किसी गिलगिली चीज की ओर आंखें चढ़ाने में भी घिर आती है। नगा ने मुस्कुराकर कहा, कहां है मेरा राजा? चुलिफा ने वहीं से पुकार कर कहा, मैं यहां हूं। अहोम राज्य का एक छत्र शासक नगा युवक सहसा उसके पास चला आया। सागर ने देखा, भीड़ का रंग बदल गया है, वैसा ही अंधकार, वैसा ही अथाह प्रसार, पर उसमें जैसे कहीं व्यवस्था। भीड़ में जगह जगह नगा दर्शक बिखरे, पर बिखरेपन में भी एक माप नगा ने पास से कहा, मेरे राजा। एकाएक बड़े जोर की गड़गड़ाहट हुई। सागर खड़ा हो गया, उसने आंखें फाड़ कर देखा। नगा युवक सहसा बर्छी के सहारे कई कई सीढ़ियां फांद कर चुलिफा के पास पहुंच गया है। बर्छी सीढ़ी की ईंटों की दरार में फंसी रह गई है, पर नगा चुलिफा को धक्के से गिराकर उसकी छाती पर चढ़ गया है। उधर जनता में एक बिजली कड़क गई है, कुमार की जय, किसी ने फांद कर मंच पर चढ़कर कोड़ा लिए जल्लादों को गिरा दिया है, किसी ने अपना अंग वस्त्र जयमती पर डाला है, और कोई उसके बंधन की रस्सी टटोल रहा है। पर चुलिफा और नगा सागर मंत्र मुग्ध सा खड़ा था। उसकी दीद चुलिफा पर जमी थी। सहसा उसने देखा कि नगा तो निहत्था है, पर नीचे पड़े चुलिफा के हाथ में एक चंद्रा का डाव है, जो वह नगा के कार्ड में पीछे साथ रहा है। नगा को ध्यान ही नहीं है, मगर चुलिफा की आंखों में पहचान है कि नगा कोई और नहीं, स्वयं कुमार है। और वह डाव साध रहा है, कुमार छाती पर है, पर मर जाएगा, या छत भी हो गया तो चुलिफा ही मर गया, तो भी अगर कुमार छत हो गया तो। सागर उछला, वह चुलिफा का हाथ पकड़ लेगा, डाव छीन लेगा। पर वह असावधानी से उछला था, उसका कीचड़ सना बूट सीढ़ी पर फिसल गया, और वह लुढ़कता फुड़कता नीचे जा गिरा। अब चुलिफा का हाथ सध गया है, दाव उसकी पकड़ अब कड़ी हो गई है। अब लेफ्टिनेंट सागर ने वहीं पड़े पड़े कमर से रिवॉल्वर खींचा और शिस्त होकर दाग दिया, थाए। धुआं हो गया, हटेगा तो दिखेगा, पर धुआं हटता क्यों नहीं? आग लग गई है, रंग महल जल रहा है, लपटे इधर उधर दौड़ रही हैं। क्या चुलिफा जल गया? और कुमार, क्या यह कुमार की जय ध्वनि है कि जयमती की अद्भुत रोमांचकारी गूंज, जिसमें मानो वह डूबा जा रहा है, डूबा जा रहा है। नहीं नहीं, उसे संभलना होगा। लेफ्टिनेंट सागर सहसा जागकर उठ बैठा, एक बार हक्का बक्का होकर चारों ओर देखा, फिर उसकी बिखरी चेतना केंद्रित हो गई। दूर से दो ट्रकों की दो जोड़ी बत्तियां पूरे प्रकाश से जगमगा रही थी, और एक से सर्च लाइट इधर उधर भटकती हुई रंग महल की सीढ़ियों को क्षण क्षण ऐसे चमका देती थी, मानो बादलों से पृथ्वी तक किसी वज्र देवता के उतरने का मार्ग खुल जाता है। दोनों ट्रकों के हॉर्न पूरे जोर से बजाए जा रहे थे। बौछार से भीगा हुआ बदन झाड़कर लेफ्टिनेंट सागर उठ खड़ा हुआ। क्या वह रंग महल की सीढ़ियों पर सो गया था? एक बार आंखें दौड़ाकर उसने मेहराब को देखा, चांद निकल आया था, मेहराब की ईंटें दिख रही थी, फिर धीरे धीरे उतरने लगा। नीचे से आवाज आई, साहब दूसरी गाड़ी आ गया, टोकर ले जाएगा। सागर ने मुंह उठाकर सामने देखा और देखता रह गया। दूर चौरस ताल चमक रहा था, जिसके किनारे पर मंदिर भागते बादलों के बीच से कांपता हुआ, मानो शुभ्र चांदनी से ढका हुआ हिंडोला। क्या एक रानी के अभिमान का प्रतीक, जिसने राजा को बचाया, या एक नारी के साहस का, जिसने पुरुष का पक्ष प्रदर्शन किया, या कि मानव मात्र की अदम्य स्वतंत्र प्रेरणा का अभी अज्ञेय जयदोल।